ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं दिल्ली एम्स की चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन की प्रभारी प्रोफेसर शिफाली गुलाटी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस है। ये दिवस सीपी से पीड़ित व्यक्तियों की आवाज को बुलंद करने के लिए एक अवसर के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है #uniquelycp। सेरेब्रल पॉल्सी समुदाय की विशिष्टता, उनकी रुचियों, जुनून और पहचान का जश्न मनाता है, जो दर्शाता है कि वे केवल अपनी विकलांगता से परिभाषित नहीं होते। थीम इस बात पर जोर देता है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से विशेष है और समाज को इन विशिष्ट पहचानों को समझना और स्वीकार करना चाहिए। आज इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं एम्स में चाइल्ड न्यूरोलॉजी की इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर शिफाली गुलाटी। डॉक्टर गुलाटी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार
डॉक्टर गुलाटी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये सेरेब्रल पॉल्सी है क्या और ये कितने प्रकार का होता है।
सेरेब्रल पॉल्सी एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है, जिसके अंदर जो डेवलपिंग ब्रेन होता है, या तो वो जो इंट्रायूट्राइन पीरियड होता है, जब माँ की कोख में होता है बच्चा फीटल लाइफ में, या जन्म के टाइम में, या जन्म के बाद जो पहले 2 साल में कोई भी एक बार स्टैटिक मतलब एक टाइम की इंसल्ट दिमाग को होती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन डैमेज होता है, उसकी वजह से जो न्यूरोमोटर कंट्रोल होता है दिमाग का शारीरिक अंगों में और सुनाई का, देखने का और समझ, उन सब में परेशानियां होती हैं, तो वो सारा जो ये है उसको बोलते हैं सेरेब्रल पॉल्सी। जिसके बहुत सारे कारण होते हैं जो एंटीनेटल पीरियड में, प्रेगनेंसी में, या डिलीवरी के टाइम या उसके बाद के होते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है हमारे देश में जो है बर्थ एस्फिक्सिया। तो बहुत जरूरी है कि जो डिलीवरी होती है वो हॉस्पिटल्स में हो, ताकि डिलीवरी के टाइम में जो बच्चे के ब्रेन में सप्लाई है ब्लड की, ऑक्सीजन की, वो सब बनी रहे, देर से बच्चा ना रोए, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट प्रिवेंटेबल कारण है। पर उसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम में अंदर भी, बच्चे के अंदर कोई भी कारण हो रहे हो, और बाद में कभी कई बार होता है कि बच्चे के दिमाग में इन्फेक्शन हो जाती है, या बच्चे को कोई और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, कोई मैलफॉर्मेशन है, या बच्चे को कभी चोट लग जाती है। हमने देखा है कि ये जो मेनिनजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, इसके सीक्वेले हो जाते हैं। तो कोई भी प्रकार से ब्रेन को इफेक्ट होता है, इंसल्ट होती है, उससे होता है। जो जो इंसल्ट होती है ना, वो एक टाइम की होती है, लेकिन उसके जो रेपरकशंस होते हैं, जो उसके सीक्वेले होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग कि ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज हुआ है।
जी,
तो इसलिए जो हम देखते हैं आपके ना किस टाइप की, वो तो है मोस्टली जो होती है इनमें टाइट होते हैं, जिसको स्पास्टिक सीपी होती है, चिकैयों के अंदर होता है। कुछ बच्चे बिल्कुल ढीले हो जाते हैं जो कम प्रतिशत होती है, दूसरे कुछ लड़खड़ा के चलते हैं, अटैक्सिक वो कम होती है। मिक्स सीपी भी काफी कॉमन होती है, जिसमें स्पास्टिसिटी और एक डिस्काइनेटिक होती है, जिसके अंदर हाथ पैर ट्विस्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली टाइटनिंग वाली और ट्विस्टिंग वाली, या उनका कॉम्बिनेशन, वो कॉमन है। जो ट्विस्टिंग वाली जैसे है, जो डिस्कनेक्टिक वो ज्यादा होती है, जिनमें पीलिया हो जाता है नवजात टाइम में, पीलिया होता है न्यू बॉर्न पीरियड में, तो अगर वो पीलिया दिमाग में जाके उसको डैमेज करता है, जिससे सुनाई की प्रॉब्लम भी होती है और ट्विस्टिंग की। तो ये अगर हम टोपोग्राफिकली देखें तो ये ऐसे होता है, और अगर कितने लिम्स इन्वॉल्व है उस हिसाब से भी है, चारों इन्वॉल्व है, तो क्वाड्रिप्लेजिक सीपी हो जाता है, जो ऑब्वियसली सिवियर होगा। और जो प्रीमेच्योर बच्चे पैदा होते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उनको डायप्लीजिया होता है, उनके दोनों पैर में थोड़ी सी टाइटनेस वगैरह होती है, वो माइल्डर फॉर्म होता है। कई हेमिप्लेजिक होते हैं, जिसमें एक साइड में हाथ और पैर थोड़ा कम करते हैं काम। तो डिपेंडिंग ऑन द एरियाज इन्वॉल्व, ये डिफरेंट टाइप की सीपी बताई गई है, पर डिपेंड आपको जो फंक्शनली होगा कि कितना डैमेज हुआ है और उसके कितने उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं।
आपने कुछ सिम्टम्स में बताया, लेकिन हम आपसे और जानना चाहेंगे क्या सिम्टम्स हैं, इसको कैसे पहचाना जाए।
सिम्टम वाइज ऐसा है, जिसको पैदा होने के टाइम में परेशानियां हुई हैं, वो उनको हाई रिस्क न्यूबॉर्न बोलेंगे, तो उनको क्लोजली फॉलोअप करना होता है। और इनके अंदर क्या तो होता है कि जो माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे 1-3 महीने पे बच्चा गर्दन संभाल रहा है, 6 महीने पे मोमेंटली बैठ जाता है, 1 साल पे एक फर्स्ट स्टेप ले लेता है, अगर ये सारी चीजें लेट हो रही है, बच्चे का 1 साल पे टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है, या अपने नाम को रिस्पॉन्ड बीच में नहीं कर रहा है, तो जो भी इसके माइलस्टोन्स हैं बच्चे के डेवलपिंग, अगर वो लेट हो रहे हैं, तब एक चिंता का विषय है। दूसरा, मैंने आपको बताया था वो टाइटनेस वाली प्रॉब्लम जो है, स्पास्टिसिटी, वो ज्यादा होती है। कई बार बच्चे छोटे में ही 5-6 महीने में भी आप उनको कंधे से उठाएंगे, उनके जो दोनों टांगे हैं ना वो कैंची की तरह क्रॉस कर जाएंगी, तो वो सीजरिंग होता है। तो अगर ऐसी चीजें हैं, हमें और देखना है कि सुनाई उनको सही दे रहा है, दिख रहा है, आपको फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें नोट करनी है। अगर इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें एकदम से पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। और जो ये जिनको प्रॉब्लम हुई है जन्म के टाइम में या बाद में कोई भी ऐसे दिमाग के इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो जो फॉलोअप में देख रहे हैं पीडियाट्रिक्स वाले डॉक्टर, तो ये सारे लक्षणों का, उनके माइलस्टोन्स का उनको असेसमेंट करना होता है कि कभी भी उनको कोई परेशानी लगे। साथ में अगर कुछ भी डिले है तो हमें सुनवाई और देखने का बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट करना, क्योंकि अगर हियरिंग और विजन सही नहीं होगा, हम सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, तो आगे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कहीं पे भी हमें डेवलपमेंट में प्रॉब्लम दिख रही है या हमारे को दिख रहा है वो टाइटनेस ज्यादा है, जो सीजरिंग की वजह से हो सकती है, जो पैर कैंची की तरह हो, या हाथ में क्या होता है कि हमारा जो अंगूठा होता है, अंगूठा सेपरेट होता है ना हाथ से, तभी हम लिख पाते हैं। इन बच्चों के अंदर जो है, छोटे बच्चों में ये जो थंब है मुड़ के पाम में, फिस्ट में हो जाता है, थंब इन पाम करके, तो वो वाला भी इनमें टाइटनेस की वजह से जो लक्षण दिख रहे हैं। कुछ भी अगर जब भी डाउट लगता है इन चीजों का, तो फिर हमारे को दिखाना पड़ता है। साथ में इनमें कई बार दौरे हो सकते हैं, और जो मैंने बोला था ट्विस्टिंग वगैरह होती है ना जो हाथ पैर की, वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आती है। तो ये सारे चीजों में कभी भी हमें लक्षण लगते हैं तो हमें संपर्क करना है, और जिनको परेशानियां हुई हैं जन्म के टाइम में या बाद में, उनको तो पीडियाट्रिशियंस बुलाते हैं क्लोज फॉलोअप के लिए, ये सारी चीजें देखने के लिए।
और हम जानना चाहेंगे आपसे कि इसके प्रिवेंशन क्या है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और अगर नहीं तो उसके रिस्क को कैसे हम कम से कम कर सकते हैं।
एक तो है प्रिवेंशन के ना, तीन प्रकार होते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन किसी भी बीमारी के, हाँ, तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो है कि वो चीज हो ही ना। सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्राइमरी प्रिवेंशन हुआ कि जो बर्थ एस्फिक्सिया हो रहा है ना, बच्चा जो देर से रो रहा है जन्म पे, जिसकी वजह से उसको ब्लड सप्लाई ब्रेन में कम हो रही है और जो डैमेज हो रहा है, वो प्रिवेंट करना इज सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे बड़ा मतलब प्रिवेंटेबल कारण वो जो है एस्पेक्ट वो है, तो उससे प्रिवेंशन होता है। प्लस मदर जब मैं जो गर्भावस्था के टाइम में क्लोजली फॉलोअप करके दिखाते रहना, हाँ, डिलीवरी मैंने बोला हॉस्पिटल में, कोई भी बच्चे को बीच में आगे प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है, कुछ है, तो उसका इलाज ठीक तरह से करना। और एक और प्रिवेंटेबल कारण है, बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं, बिस्तर से गिर जाते हैं, छत से गिर जाते हैं, सीढ़ियों से गिर जाते हैं, हेड इंजरी जो हो जाती है, ये सारी चीजें प्रिवेंटेबल है। तो जो भी प्रिवेंटेबल है उसको घटना ही नहीं घटेगी। जो स्टैटिक इंसल्ट था ब्रेन को, एक टाइम का इंसल्ट हुआ डेवलपिंग ब्रेन को, तो अगर इंसल्ट ही नहीं हो रहा तो वो प्रिवेंट हो गया ना पहले से। सेकेंडरी प्रिवेंशन दूसरा आता है कि जिसको रिस्क, हाई रिस्क वाले बच्चे हैं, जिनके साथ परेशानी हो गई है, तो उनको क्लोजली हम फॉलो करते हैं और उनको होलिस्टिकली देखते हैं कि उनके सिर्फ अंग वंग नहीं, सारा उसका समझ कितनी आ रही है, सोशल सारा कम्युनिकेशन, बोलना सुनना, सारा कुछ होलिस्टिकली देख के उनका अर्ली इंटरवेंशन शुरू कर दिया जाता है। ये तो आजकल तो ये भी कहा जाता है, जो न्यू बॉर्न बेबीज, नवजात शिशु है, जिनको नर्सरी में रखा जा रहा है, NICU में, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में, जबकि परेशानी हुई है, तब से ही उनके साथ अर्ली स्टिमुलेशन शुरू होना, क्योंकि बाकी बच्चे तो अपने आप खिलौनों से खेलते हैं, इनके साथ इंटरेक्शन, सारी जो सेंसेस हैं, विजन, हियरिंग, टच, ये सारा सोशल कम्युनिकेशन, सारी चीजों का हमारे को इनके साथ बैठ के प्रोएक्टिवली इनको समझाना होता है, ताकि ये आगे उनका डेवलपमेंट हो। क्योंकि बच्चे के ब्रेन में प्लास्टिसिटी होती है, तो काफी चीजें उसके अंदर रीच डेवलप हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे बच्चा डेवलप हो रहा है, उम्र में बढ़ता है ना, तो जो एक आप एक्सपेक्ट करते हो एक 3 महीने के बच्चे से, बल्कि इसमें जो आप 1.5 साल के उम्र के में से एक्सपेक्ट करते हो, तो ऑब्वियसली 1.5 साल के बच्चे की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है जो कर सकता है चीजें, तभी 3 महीने के अंदर जो नॉर्मल बच्चा क्या कर सकता है, और इनमें इतना डिफरेंस नहीं आता, जब आगे जाता है तो डिफरेंस आ जाता है, मतलब एक्सपेक्टेशंस, जो बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और बलिस्मत इनके में काफी गैप दिखने लगता है, तो हमें उसकी वेट नहीं करनी, हमें शुरू ही से आइडेंटिफाई करके अर्ली स्टिमुलेशन देना है, ताकि इनके जो स्टिमुलेशन देने से जो आप जितना भी इनकी प्लास्टिसिटी ब्रेन की है, जितना उसका ग्रोथ रिकवर कर सके, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन है जो बाद में होता है, कि जो परेशानियां आ गई है बच्चे को, जैसे अगर उनको अगर एपिलेप्सी है, साथ में दौरों की दवाई चलेगी, टाइटनेस है, ट्विस्टिंग है, उनकी दवाइयां चलेंगी, फिर टाइटनेस के लिए हमारे को एडी में होती है टाइटनेस, एफओ होती है वहां पे होती है, तो उनके लिए गेटर्स और AFOs वगैरह देने, स्प्लिंट्स देने, और आजकल काफी टेक्नोलॉजी की एडवांसेस हो गई है, इवन जो शुरू में ना, जो शुरू में छोटे बच्चे हैं उनके अंदर इन्फेंसी के अंदर उसमें जनरल मूवमेंट्स देखा जाता है, तो आजकल उनको वीडियो से देख के भी हम प्रोडक्ट प्रेडिक्शन लगा सकते प्रेडिक्शन हो सकते हैं कि आगे चल के सीपी सेरेब्रल पॉलिसी होगा कि नहीं। कुछ टेक्नोलॉजी से डिवाइसेस बने हैं, जैसे हमारा भी यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी असिस्ट डिवाइस है बनाए हैं आईआईटी दिल्ली के साथ। जैसे कि उसमें क्या है कि बच्चा को अगर एक साइड की वीकनेस ज्यादा है, एक साइड में हाथ पैर कम काम कर रहा है, जिसमें मैंने आपको बोला था हेमिप्लेजिक सीपी, उन बच्चों में कि जो नॉर्मल साइड है उसको हम स्लिंग से रिस्ट्रेन करते हैं, जो नॉर्मल वाला हाथ है इसमें स्लिंग से उसको रिस्ट्रेन करके, जो सही वाला है उसको रिस्ट्रेन करके, जो अफेक्टेड है उससे हम गेम्स खिलाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि वो वाला ब्रेन का एरिया भी डेवलप हो। तो इसके लिए काफी अनुसंधान किया। तो वर्चुअल रियलिटी से काइनेक मोशन सेंसर को से बच्चों को वेबकैम के सामने रखें और फिर कंप्यूटर उसको देखते हुए वीडियो उनको असिस्ट कराते हैं एक्सरसाइज के अंदर, उसमें बच्चों को भी खुशी हो रही थी कि जब बच्चों को इंटरेक्शन हो रहा था और उसमें हमने काफी इम्प्रूवमेंट देखा है। तो ऐसा ही अभी ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के ऊपर भी हमारा स्टडी खत्म हुआ है, जिसमें उसमें इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट आई है। तो दे आर वेज इन विच, और अभी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे काम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो काफी टेक्नोलॉजी से काफी एडवांसेस आई है जिससे इनको आगे इनका रिहैबिलिटेशन जो टर्शियरी प्रिवेंशन हो गया उसका अनुसंधान अभी जारी है।
डॉक्टर गुलाटी, हमारे कार्यक्रम को आकाशवाणी को दुनिया के कोने कोने में सुना जाता है, भारत के कोने कोने में सुना जाता है। जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं उनको आपकी क्या सलाह रहेगी कि क्या प्रिवेंशन बोल रहे हैं?
एक तो जो गर्भवती है जो प्लान कर रहे हैं वो एक फोलिक एसिड की दवाई आती है वो खानी चाहिए, जो प्री कंसेप्शन होता है, जिसको प्री कंसेप्शन होता है, पहले कंसेप्शनल देते हैं वो प्री कंसेप्शन से पहले। तो ऑब्वियसली वो जब आपको प्रेगनेंसी पता चलेगी तब नहीं है, वो सीपी के लिए नहीं है, वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के प्रेजेंटेशन के लिए है। पर वो मैं जस्ट बिकॉज एक प्रिवेंटेबल कारण है तो ये मैसेज मैं देना चाह रही थी। लेकिन जो गर्भवती है तो वो बेसिकली जो भी आपका रेगुलर चेकअप्स वगैरह कराने बहुत जरूरी है, और जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, यू नो स्पेशली बाद में 20 हफ्ते पे होता है डिटेल अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि बच्चा के अंदर सब कुछ सही है, कुछ परेशानी तो नहीं है, वो सारी चीजें करानी है, जो इंजेक्शन लगाने हैं वो कराना है। कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, माँ को अगर तेज बुखार हो रहा है या बाद में इवन थर्ड ट्रिमेस्टर में जब ना यूरिन इन्फेक्शन भी जब गर्भवती माँ को है उसका भी कोरिलेशन सेरेब्रल पॉलिसी से आया है, इट मीन्स कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप नजरअंदाज नहीं करिए और आप मेडिकल फॉलोअप में रहिए। और प्लीज डिलीवरी जो है वो एक हॉस्पिटल में ही करानी है, और कहीं पे कोई गांव में है जहां पे आसपास इमीडिएटली हॉस्पिटल नहीं है तो कोई ट्रेन बर्थ अटेंडेंट जरूर डिलीवरी करे, बिकॉज वो एक टाइम है जो बहुत क्रूशियल है और उसको हम यू नो प्रिवेंट कर सकते हैं ये परेशानी होना। और जो अल्टीमेटली क्योंकि जितना ब्रेच में डैमेज होगा जिस भी बच्चे में और उसके बाद कितना रिकवरी होगा वो भी हर बच्चे में इंडिविजुअलाइज है, तो हमारे को आगे चल के बस ये कोशिश करनी है कि हर बच्चे का जितना पोटेंशियल है उस तक लाए जाए, उनकी परेशानी समझना है और उनको साथ लेके हम इंक्लूजन बात करते हैं स्कूलों के लिए बस, लेकिन इंक्लूजन घरों में भी चाहिए। आपने कितनी शादियों में कितने बर्थडे पार्टीज में देखा है ऐसे बच्चे जो आए हैं, इनको हमें इंक्लूजन घर में करना है, स्कूलों में करना है और सोसाइटी में करना है। और ये नॉट मी फिनोमिना नहीं है, जिसके पास नहीं है जो दूसरों को नीचा देखते हैं वो बिल्कुल ही गलत है, ये स्टिग्मा बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, देयर इज नो स्टिग्मा। आपको हमेशा ये समझना है कि परेशानी आई है पर कोई बात नहीं, उसका जितना बच्चे का मैक्सिमम पोटेंशियल तक हम ले जाएं। और हमारे को ये देखना है कि फैमिली सेंट्रिक होना है पर फैमिली को भी पूरा सपोर्ट सिर्फ सारा कुछ माँ पे ना डाल दिया जाए, हस्बैंड वाइफ दोनों देखे, कोई और सपोर्ट कर सकता है तो करे, लेकिन एक ये नहीं, एक तो बच्चे को एक बिल्कुल छोड़ नहीं देना है, उसके साथ मेहनत करनी है और सिर्फ माँ के ऊपर नहीं डाल देना है।
डॉक्टर गुलाटी, आप संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि भारत में इस तरह की बीमारी से जो पीड़ित हैं उनके लिए क्या क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं और उनके स्कूलिंग का या डे केयर उनका किस से ये चीजें उनको एक्सेसिबल है?
एक्चुअली ये जो सेरेब्रल पॉलिसी है ना ये एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियां जो इस एक स्टैटिक इंसल्ट में आती है, हर बच्चा डिफरेंट होगा, जो एफ्लिक्शन होगा बच्चे में जो आपको दिखेगा, किसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखेगी, जैसे कि कोई प्रीमेच्योर बच्चा जिसमें सिर्फ दोनों पैरों में टाइटनेस है बाकी उनकी समझ भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो वो लोगों का जो है अल्टीमेटली उनका काफी अच्छा स्कोप रहेगा, बाकी लोगों की तरह वो चलेंगे, मतलब पढ़ाई वगैरह में सारा कुछ, जॉब वगैरह में पूरा सोसाइटी के, एक्सेप्ट थोड़ी सी लोअर लिम्स में प्रॉब्लम रहेगी। और दूसरी तरफ जिनको क्वाड्रिप्लेजिक है, दोनों तरफ से दोनों हाथ और दोनों पैर की प्रॉब्लम है, विजन और हियरिंग की भी प्रॉब्लम है, खान पान की भी प्रॉब्लम है, दौरे भी हैं, ये सारे जो है वो बिल्कुल ही इतने ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, तो उसके अंदर उनको बहुत सपोर्टिव केयर देना पड़ेगा।
हमें आशा है कि ये बातचीत जागरूकता और समर्थन के महत्व को उजागर कर पाई, और हमें ये याद रखना है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और समान है और मिलकर हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। डॉक्टर गुलाटी, आपका आकाशवाणी के साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी दिल्ली एम्स की चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन की प्रभारी प्रोफेसर शिफाली गुलाटी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ए आई आर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।